परमेश्वर में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपको हमारा नमस्कार। कार्यक्रम सत्य वचन में आपका हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, जैसा कि आपको मालूम है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम पवित्र शास्त्र बाइबल का क्रम अनुसार अध्ययन किया करते हैं, जो हमें आध्यात्मिक बातों को समझने और आगे बढ़ने में हमारी सहायता करता है। इन दिनों हम पौलुस प्रेरित द्वारा लिखी गई इफिसियों के नाम पत्री का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और श्रोताओं, हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आध्यात्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए, इससे पहले कि इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, प्रस्तुत है एक मधुर संगीत रचना।
सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन
रचना, हम पर रहे तेरे। प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी परमेश्वर की दया से सब परिवार कुशल पूर्वक हैं और फिर से एक बार आज इस कार्यक्रम को सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सबका इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम इन दिनों बाइबल से इफिसियों की पत्री नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने इस पुस्तक के परिचय को देखा और आज हम इस अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और इसका आरंभ करेंगे। लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और आज के अध्ययन के लिए परमेश्वर से सहायता मांगे। हमारे सामर्थ्य और जीवित पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवित और सामर्थ्य वचन के लिए, जिसके माध्यम से आप हमसे बोलते और बातचीत करते हैं, हमें सिखाते और समझाते हैं और सुधारते हैं। प्रभु जी, इस वक्त जब हम आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमें से प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए, ताकि आज हम जो कुछ भी सीखते हैं निश्चित रूप से हमारे जीवन के लिए आत्मिक लाभ का कारण बन सके। हमारी प्रार्थना उन प्रिय भाई बहनों के लिए है जो अपने जीवन में निराश हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, या किसी प्रकार के दबाव में हैं, या किसी प्रकार की बीमारी में हैं, आर्थिक परेशानी में हैं। प्रभु जी, आप उनकी सहायता करें, अपनी शांति और छुटकारा करें, न केवल शारीरिक रीति से बल्कि आत्मिक रीति से, ताकि वे भी आप में आनंदित होने पाए। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। विनती अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आइए अब हम आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले इस पुस्तक की विषय सूची को देखेंगे। इस पुस्तक को दो भागों में बांटा गया है। पहला है अध्याय 1-3, कलीसिया की स्वर्गीय बुलाहट। पहला है सिद्धांतिक, अध्याय 1-3, कलीसिया की स्वर्गीय बुलाहट। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कलीसिया एक देह है, अध्याय 1। दूसरा है कलीसिया एक मंदिर है, अध्याय 2। तीसरा, कलीसिया एक रहस्य है, अध्याय 3। तब हम दूसरे भाग में आते हैं, व्यवहारिक, जो अध्याय 4-6 में पाया जाता है, पृथ्वी पर कलीसिया का संचालन। पहला इसमें आता है कलीसिया एक नया व्यक्ति अर्थात मनुष्य है, अध्याय 4। दूसरा, कलीसिया एक दुल्हन होगी, अध्याय 5। तीसरा, कलीसिया एक सेना अर्थात योद्धा है, अध्याय 6। मेरे प्रियो, इसी प्रकार से पुस्तक के दो विभाजन किए गए हैं ताकि हम इस पुस्तक का सही रूप से अध्ययन कर सकें, अर्थात सरलता से समझ सकें। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे इफिसी अध्याय 1 में, जिसका विषय है कलीसिया एक देह है। हम इसके परिचय में पाते हैं कि इफिसियों की पत्री का आरंभ कलीसिया की स्वर्गिक बुलाहट की शिक्षा से आरंभ होता है। तो आइए हम देखें प्रस्तावना। इफिसियों के पत्र 1 अध्याय उसके 1-2 पद में हम पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी सभी लोगों के नाम जो इफिसुस में हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। मेरे प्रियो, इस पत्री में पौलुस का परिचय सब पत्रियों में सबसे छोटा है। यह छोटा इसलिए है कि यह पत्री लिखी तो इफिसुस की कलीसिया को गई थी, परंतु इसका उद्देश्य सब कलीसियाओं के लिए था। जब हम देखते हैं तो कुछ मूल लेखों में इफिसुस में नहीं लिखा है। यह वह पत्र है जिसका उल्लेख पौलुस कुलुसी की कलीसिया को लिखे पत्र में करता है कि लदोकिया की कलीसिया को पढ़कर सुनाए। इसका अर्थ यह हुआ कि यह पत्र उस युग में एक विशेष चिट्ठी था जो सब कलीसियाओं में पढ़कर सुनाया जाता था। वह एक स्थानीय कलीसिया की अपेक्षा कलीसियाओं को आम तौर पर पत्र लिख रहा था, अर्थात विश्वासियों के अप्रत्यक्ष देह को। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, इसे इस प्रकार कहना चाहिए, पौलुस प्रभु यीशु का प्रेरित है। आप यह न समझें कि मैं बाल की खाल उधेड़ रहा हूं, परंतु यहां और अन्य सब स्थानों में मसीह यीशु होना चाहिए। मसीह उसका पद है, अर्थात वह जो है, जिसे हम मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय के 16 पद में पत्रस ने कहा उसे पाते हैं, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु उसका नाम था। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय उसके 16 पद में पौलुस कहता है कि हम उसे शरीर के अनुसार नहीं जानते हैं। पौलुस उसे 3 वर्ष इस संसार में प्रचार करने वाले यीशु के रूप में नहीं जानता था। वह उसे दमिश्क के मार्ग में मिलने वाले महिमा के मसीह के रूप में जानता था। अतः पौलुस सदैव मसीह पर अधिक बल देता था। हमें उसे मसीह यीशु कहना चाहिए, न कि यीशु मसीह। मेरे प्रियो, पौलुस स्पष्ट कहता है कि वह एक प्रेरित है। प्रेरित कौन होता है? हम इससे कई लोग इस बात को नहीं समझते हैं। यह कलीसिया में सर्वोच्च पद होता है। अतः कलीसिया में कोई भी प्रेरित नहीं है, क्योंकि प्रेरित होने की अनिवार्यताओं में कोई भी खरा नहीं उतर सकता। अनिवार्यताएं इस प्रकार से हैं। यूं कहूं कि नियम है जिसके आधार पर आपको होना चाहिए। पहला है, प्रेरितों ने यीशु के जीवित होठों से सीधी नियुक्ति प्राप्त की थी। पौलुस ने अपने लिए यही दावा किया था, जिसे हम गलातियों की पत्री 1 अध्याय उसके 1 पद में पढ़ते हैं। पौलुस की जो न मनुष्यों की ओर से और न मनुष्यों के द्वारा, वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा, जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया, प्रेरित है। मेरे विचार में यही मुख्य कारण है कि पौलुस को यहूदा का स्थान मिला। शिष्यों ने तो मत्तियाह को चुना था, परंतु मैं धर्मशास्त्र में कहीं नहीं देखता कि प्रभु यीशु ने उसे नियुक्त किया था। यह तो स्पष्ट है कि सब प्रेरितों की नियुक्ति प्रभु यीशु की ओर से सीधी की गई थी। दूसरा है, प्रेरितों ने पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु को देखा था। पौलुस ने यह अनिवार्यता भी पूरी की थी। और तब तीसरी बात है, प्रेरितों को एक विशेष प्रेरणा प्राप्त थी। उन्होंने धर्मशास्त्र लिखा और उसकी व्याख्या भी की। देखिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 26 पद, 16 अध्याय के 13 पद, गलातियों के पत्र 1 अध्याय उसके 11 और 12 पद में हम देखते हैं। निश्चय ही पौलुस प्रेरितों में सबसे अधिक इस अनिवार्यता में खरा उतरा है। चौथा हम देखते हैं, वे सर्वोच्च अधिकार का प्रयोग करते थे। आप देख सकते हैं 20 अध्याय उसके 22 से 23 पद में, 2 कुरिन्थियों के पत्र 10 अध्याय उसके 8 पद में। और तब पांचवी बात है जो अनिवार्यता में आती है, उनके अधिकार का प्रमाण आश्चर्य कर्म करना था। आप देखिए मरकुस रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 13 पद, लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसके 1 से 2 पद, प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 43 पद। मैं नहीं मानता कि आज के विश्वासियों में ऐसा सामर्थ है। यह प्रेरिताई का प्रमाण था। प्रथम शताब्दी के अंत में यूहन्ना ने लिखा, 2 यूहन्ना की पत्री उसके 10 पद में, यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा न दे तो उसे न तो घर में आने दो और न नमस्कार करो। मेरे प्रियो, उस समय तक प्रेरितों का प्रमाण आश्चर्य कर्म नहीं सही शिक्षा देना था। और तब हम छठवीं बात देखते हैं, उन्हें विश्वव्यापी अधिकार दिया गया था कि कलीसिया की स्थापना करें। आप देखिए 2 कुरिन्थियों की पत्री 11 अध्याय उसके 28 पद, पौलुस ने भरपूरी से इन 6 अनिवार्यताओं की पूर्ति की थी। पौलुस परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है। पौलुस ने अपने प्रेरित होने को परमेश्वर की इच्छा पर आधारित किया, न कि स्वयं की लालसा या मनुष्य की इच्छा या कलीसिया के आग्रह पर। हम गलातियों के पत्र 1 अध्याय उसके 15 और 16 पद में पढ़ते हैं, जहां पर वह लिखता है, परंतु परमेश्वर की, जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया, जब इच्छा हुई कि अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो न मैंने मांस और लहू से सलाह ली। 1 तिमुथियुस की पत्री 1 अध्याय उसके 12 और 13 पद में वह तिमुथियुस को स्पष्ट कहता है, मैं अपने मसीह यीशु का, जिसने मुझे सामर्थ दी है, धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वासी की दशा में बिन समझे बूझे ये काम किए थे। मेरे मित्रों, पौलुस ने अपने प्रेरिताई के आधार को बार बार परमेश्वर प्रदत्त बताया है, अर्थात परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ बताया है। आप पहला कुरिन्थियों की पत्री एक अध्याय उसके एक पद, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री एक अध्याय उसके एक पद, कुरिन्थियों की पत्री एक अध्याय उसके एक पद और दूसरा तिमुथियुस एक अध्याय उसके एक पद में यही उद्घोषणा को पाएंगे। विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में हैं, विश्वासी के लिए प्रयोग किया गया मूल शब्द यूनानी भाषा में है जिसका अर्थ है पवित्र या पृथक, जिसका मूल उद्देश्य है केवल परमेश्वर के काम के लिए पृथक करना जो केवल परमेश्वर ही के लिए हो। मिलाप वाले तंबू के पात्र पवित्र कहलाते थे, क्यों? क्योंकि वे केवल परमेश्वर के लिए ही पृथक किए गए थे, अतः पवित्र थे। क्या वे सर्वोत्तम श्रेणी के थे? नहीं, मेरे विचार में तो वे जंगल यात्रा के बाद टेढ़े मेढ़े हो गए होंगे। अतः मेरे मित्रों, विश्वासी वह है जिसने प्रभु यीशु में विश्वास किया हो और केवल परमेश्वर के लिए पृथक किया गया हो, अर्थात परमेश्वर के लिए अलग किया गया हो। आज केवल दो ही प्रकार के मनुष्य हैं, पवित्र जन और अपवित्र जन, परंतु कुछ ऐसे पवित्र जन भी हैं जो परमेश्वर के काम नहीं आ रहे हैं। यह उन्हीं का दोष है, वे परमेश्वर के काम और उसकी सेवा के लिए अलग किए गए हैं। पवित्र जनों को पवित्र व्यवहार करना आवश्यक है, परंतु अपने व्यवहार के कारण वे पवित्र नहीं हैं। वे मसीह में अपने स्थान के कारण पवित्र हैं, वे उसके हैं और उसके द्वारा काम में आए। इफिसुस में ध्यान दीजिए, हम इस विषय पर चर्चा कर चुके हैं। आप इफिसुस के स्थान पर अपने नगर का नाम लिख सकते हैं, मसीह यीशु में विश्वासी, अर्थात प्रभु यीशु में विश्वास करने वाले। उन्हें पवित्र और विश्वास योग्य होना है। पवित्र जन विश्वासी का ईश्वरीय परिप्रेक्ष्य है और विश्वासी उसका मानवीय परिप्रेक्ष्य है। मसीह यीशु में अति महान बात है। इस पत्री में इसे विस्तृत किया जाएगा। मैं आगे चलकर इस पर और अधिक विचार करूंगा। मेरे लिए नए नियम का सबसे अधिक महत्वपूर्ण शब्द है मैं। थियोलॉजी में अर्थात धर्मशास्त्र विज्ञान में उसके विद्वानों ने उद्धार की निराधार व्याख्या की है। आप उद्धार की क्या परिभाषा दे सकते हैं या देते हैं? मुक्ति, मेल, धर्मी ठहराया जाना, पश्चाताप करना, आपके स्थान पर मसीह का बलि होना, ये शब्द अच्छे हैं, परंतु प्रत्येक शब्द उद्धार का एक ही परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करता है। उद्धार पाने का वास्तविक अर्थ क्या है? इसका सीधा सा अर्थ है मसीह में होना। हम पवित्र आत्मा के बपतिस्मे द्वारा मसीह के साथ जैविक संबंध में आ जाते हैं जो बदल नहीं सकता। आप देखिए पहला कुरिन्थियों की पत्री 12 अध्याय उसके 12 और 13 पद में, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह हैं, उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया है, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। मेरे मित्रों, यहाँ पर हम इस बात को स्पष्ट रीति से देखते हैं। हमें विश्वासियों की देह में रखा गया है। हमें कहा गया कि जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। इसे हम पहला कुरिन्थियों की पत्री 6 अध्याय उसके 17 पद में पढ़ते हैं, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। इससे अद्भुत और क्या हो सकता है? रोमियों की पत्री 8 अध्याय उसके 1 पद में हम पढ़ते हैं, अतः जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। क्या आप इसमें कुछ जोड़ सकते हैं? मसीह यीशु में होना उद्धार की एक महान उपलब्धि है। डॉक्टर लुइस पेरे शाफर ने गिना कि यह शब्द नए नियम में 130 बार आया है। योहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 4 पद में प्रभु यीशु कहता है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। कैसी अद्भुत बात है कि हम मसीह में हैं। मैं इसकी व्याख्या नहीं कर सकता, यह एक अत्यधिक गहरी बात है। हम इसको उदाहरण या उपमा द्वारा समझा सकते हैं। चिड़िया हवा में है, हवा चिड़िया में है, मछली पानी में है, पानी मछली में है, विश्वासी मसीह में है और मसीह विश्वासी में है। हम उससे जुड़े हुए हैं। सिर शरीर में है और शरीर सिर में है। मेरी देह सिर के निर्देश बिना नहीं चल सकती है। कलीसिया मसीह की देह है और मसीह उसका सिर है। वह मसीह में है। इफिसियों की पत्री इस तथ्य पर आधारित है। मेरे प्रियो, इस पत्री के अध्ययन में सावधानी पूर्ण समय लगाएं। मेरा अपना दृढ़ विचार यह भी है कि रोमियो, कुरिन्थियों और गलातियों की पत्रियों के साथ इफिसियों को भी पत्रियों में सर्वोच्च प्रधानता दी जानी चाहिए। मेरा यह विश्वास है कि इन पत्रियों में हमारे लिए एक जीवंत संदेश है, जैसा धर्मशास्त्र के अन्य किसी भाग में हमें नहीं मिलता है। वे महान शिक्षा के धर्मशास्त्र हैं। परमेश्वर ने यहोशू से कहा, यरदन पार जा। इसे हम यहोशू 1:2 में पाते हैं। तो मैं स्पष्ट जानता हूं कि वह यहोशू ही से कह रहा था, परंतु यह मेरे लिए प्रासंगिक है। इफिसियों की पत्री नए नियम की यहोशू की पुस्तक है और यह मुझसे व्यक्तिगत रूप में चर्चा करती है। अनुग्रह अन्य जाति का अभिवादन शब्द था। एक बार मेरा मित्र यूनान में गया और उसने अपने एक प्रचारक मित्र के साथ चलते हुए एथेंस की सड़क पर जो जा रहा था और वह मार्ग में मिलने वालों का अभिवादन कर रहा था, तो उसने उससे कहा, अनुग्रह। यह सुन उस व्यक्ति ने कहा, यह तो अनुग्रह जैसा सुनाई पड़ता है। वह हंसकर बोला, यह वैसा ही है। स्पष्ट है कि आज भी अभिवादन में इसका प्रचलन है। और आगे देखते हैं, शांति। धार्मिक समुदाय में अभिवादन का शब्द शांति शालोम था। यह शब्द आप यरूशलेम में सुन सकते हैं, शालोम। पौलुस इन दोनों शब्दों को सर्वोच्च महत्व प्रदान करते हुए अद्भुत अर्थ प्रदान करता है। परमेश्वर का अनुग्रह आपके उद्धार का साधन है। आपको परमेश्वर की शांति का अनुभव पाने से पहले परमेश्वर के अनुग्रह को जानना है। इस कारण पौलुस शांति से पहले अनुग्रह को रखता है। रोमी 5:1 में लिखा है, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। आज शांति की चर्चा कोने कोने में है, परंतु संसार जब तक परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं जानेगा उसे शांति का अनुभव नहीं होगा। रोचक बात तो यह है कि आप अनुग्रह शब्द को नहीं देखते हैं, आप प्रेम और शांति जैसे शब्दों को अवश्य सुनते हैं। इन्हें निश्चय ही बाइबल से लिखा गया है, परंतु उनका अर्थ वह नहीं जो वचन में व्यक्त है। शांति का अर्थ है पापों की क्षमा के कारण परमेश्वर से मेल, और हमारे पाप परमेश्वर के अनुग्रह के बिना क्षमा नहीं हो सकते हैं। आगे हम देखते हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से। अनुग्रह और शांति पिता परमेश्वर की ओर से आते हैं। सच तो यह है कि जब हम परमेश्वर के अनुग्रह को अनुभव करके पवित्र आत्मा द्वारा नया जन्म पाते हैं, तब वह हमारा पिता हो जाता है। अनुग्रह और शांति प्रभु यीशु मसीह से भी आते हैं। पौलुस ने पवित्र आत्मा को इसमें क्यों नहीं रखा? क्या वह त्रिएक परमेश्वर को नहीं मानता था? परंतु पवित्र आत्मा तो वहां विश्वासियों में अंतर्वासी था। प्रभु यीशु स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिनी ओर उपस्थित है, अतः हमें अपना भूगोल ठीक से जानना है, अन्यथा हमारी थियोलॉजी अर्थात धर्म विज्ञान उलझन में पड़ जाएगी। मेरे प्रिय मित्रों, यहाँ पर पौलुस हमें इस बात का स्पष्टीकरण देता है कि वह परमेश्वर के द्वारा चुना गया प्रेरित है। इतना ही नहीं, उसने हमें इस बात का भी स्मरण दिलाया है कि अनुग्रह के द्वारा ही हमारा उद्धार है, और जब हम उद्धार पाते हैं तो हम परमेश्वर के साथ एक अंग एक देह बन जाते हैं। जी हाँ, कलीसिया एक है, एक देह है, और उसका सिर प्रभु यीशु है। आइए आज हम अपने जीवन में इस बात को स्मरण करें और परमेश्वर की निकटता में आए और अपने आप को प्रभु में समर्पित कर दें। मेरे प्रियो, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है, और मैं आशा करता हूँ कि इस इफिसियों की पत्री के अध्ययन के द्वारा बहुत सारी नई बातों को सीखेंगे जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए लाभ का कारण ठहरेगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप अगले अध्ययन में भी अवश्य ही शामिल हों। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओं, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम, तेरी कृपा पाने, बरसा आशीष हम दीनों पर, तेरी महिमा।